अरमान अपने काम में व्यस्त था, लेकिन देवेश के एक कॉल ने उसे बुरी तरह हड़बड़ा दिया था। देवेश उसके पास दिल्ली आ रहा था। वैसे तो अरमान को देवेश के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसके घर में उसके साथ रोहन और नव्यांशी दोनों ही रह रहे थे। रोहन को शिवांशा की वजह से तो नव्यांशी को वेद की वजह से पूरी राजावत फैमिली पसंद नहीं करती थी। नव्यांशी ने यही हल निकाला था कि वो रोहन को लेकर किसी होटल में चली जाएगी, लेकिन उसे जाने का मौका तक नहीं मिला। उससे पहले देवेश घर के दरवाजे तक पहुंच गया था। जल्दबाजी में अरमान ने नव्यांशी और रोहन को अपने वर्कस्पेस में छुपा दिया था और फिर उसने बाहर की तरफ आकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो कुछ कदम पीछे हो गया था। सिर्फ देवेश ही नहीं, उसके साथ लीला भी खड़ी हुई थी। लीला ने अरमान की तरफ घूर कर देखा और रूखे अंदाज में बोली, दरवाज़ा खोलने में इतना वक्त लगता है? हम कब से तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि देवेश ने तुम्हें पहले ही कॉल करके बता दिया था? सॉरी बड़ी माँ, मैं वॉशरूम में था। ऊपर से आप मनन को जानती हैं, वो कहाँ मिली सुनता है, अरमान ने बहाना बनाया। लीला ने आगे कुछ नहीं कहा और अरमान को साइड करके अंदर आ गई थी। अरमान उनसे सीधे सीधे ये भी नहीं पूछ सकता था कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन जैसे ही लीला ने अंदर कदम रखा, उसे देखते ही मनन जोर जोर से हंसने लगा था। लीला ने अपने बाल सही करवा लिए थे और हेयर एक्सटेंशन के बजाय उसने नेचुरल बालों को ही सेट कर रखा था। लीला के बाल अभी भी ठीक से सही नहीं हुए थे। लीला ने उसकी तरफ घूर कर देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें मनन, बच्चे नहीं रहे हो तुम जो इस तरह बदतमीजी से पेश आ रहे हो। लेकिन बड़ी माँ, आपका हेयर स्टाइल बहुत फनी है, क्या आपको कोई अच्छा स्टाइलिश नहीं मिला था? इससे अच्छे बाल तो अरमान मेरे काट देता है, अगली बार आप अरमान से बाल कटवाना, मनन ने पूरा सीरियस चेहरा बनाकर जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, वो फिर से हंस पड़ा था। वहीं अरमान ने अपने होंठ कसकर दबा दिए थे ताकि उसकी हंसी ना निकल जाए। लीला ने अरमान के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी आंखों के कोनों में हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। लीला ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किया और उभनती सांसों के साथ कहा, तुम लोगों को क्या लगता है मैंने जानबूझकर अपने बालों को कटवाया है? ये सब उस वेद की वजह से हुआ है। अब हंसना बंद करो वरना तुम दोनों के सिर पर एक बाल नहीं छोड़ूंगी मैं। मनन ने तुरंत अपने होठों पर उंगली लगा ली थी, जबकि वर्कस्पेस में बैठे रोहन और नव्यांशी को उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। भले ही वो लीला का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जिस तरह से लीला गुस्से में उनसे बात कर रही थी और मनन हंस रहा था, वो खुद ब खुद हालात का अंदाज़ा लगा सकते थे। रोहन और नव्यांशी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। लगता है भाई ने फिर से मिसेज राजावत को अच्छा सबक सिखाया है, ज़रूर मेरी भाभी को परेशान करने की कोशिश की होगी, नव्यांशी ने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी बात सुनकर रोहन को वेद की याद आ गई थी। वो शिवांशा का हर तरीके से ख्याल रखता था और इस बार तो रोहन ने खुद देखा था। जीजू सच में बहुत अच्छे हैं, रोहन बोला। नव्यांशी ने उसकी बात पर हामी भरी। वहीं बाहर अरमान लीला और देवेश के लिए चाय बनाकर लेकर आया था। इस बहाने उसे ये पूछने का मौका मिल गया था कि वो दोनों यहाँ किस लिए आए हैं। बड़ी माँ, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है, आप तो पहले कभी मेरे घर पर नहीं आई, अरमान ने सावधानीपूर्वक पूछा। अगर मजबूरी नहीं होती तो अभी भी नहीं आती। ये कैसे इलाके और घर में रहते हो तुम? किसी को पता चला तो राजावत फैमिली की नाक कट जाएगी, लीला ने इधर उधर देखते हुए मुंह बनाकर कहा। वहीं उसकी बात सुनकर अरमान के चेहरे पर सख्ती के भाव उभर आए थे। ये घर उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था जब कोई उसके घर को छोटा कहता या फिर उसे लेकर टॉन्ट मारता। ऊपर से लीला ने तो राजावत फैमिली की नाक कटने की बात तक कह दी थी। मुझे नहीं लगता कि मेरे इस छोटे से घर की वजह से राजावत फैमिली की इज्जत पर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपके बेटे ने जो किया उसके बाद जरूर लोग अब इस फैमिली को अजीब नजरों से देखते हैं। थैंक गॉड मैं आप लोगों के साथ नहीं रहता, वरना मेरा तो उदयपुर में सिर उठाकर चलना मुश्किल हो जाता, अरमान ने तंज कसते हुए कहा। देवेश लीला के गुस्से को अच्छे से जानता था। इससे पहले कि वो भड़कती, उसने अरमान को आंखें दिखाई और कहा, जाकर हमारे लिए कमरा तैयार करो, हम यहाँ दो दिन के लिए रुकने वाले हैं। और वो किस लिए? क्या आप यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे? मेरे हिसाब से आपको किसी अच्छे होटल में रुकना चाहिए, अरमान ने झट से जवाब दिया। जब पहले से ही हमारा घर मौजूद है तो क्या जरूरत है? हम यहाँ किसी लीगल काम के चलते आए हैं, भाई साहब ने यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदी है बस उसी के चलते, देवेश ने बताया तो मन ही मन अरमान ने राहत की सांस ली। इसका मतलब उन्हें रोहन और नव्यांशी के वहाँ रहने के बारे में कुछ पता नहीं था। पहले जरूर उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन अगर वो वहाँ पर दो तीन दिन रुकते तो जरूर पता चल जाता, अरमान ने मनन की तरफ इशारा किया। मनन हल्का सा मुस्कुराया और लीला के पास बैठते हुए बोला, बहुत अच्छा बड़ी माँ, पूरे तीन दिन के लिए हमारे साथ रहने वाली हैं तो मैं उनके हाथ से अब अपनी फेवरेट डिशेस बनवा कर खाऊंगा और मैं इन्हीं के साथ में सोने वाला हूँ। बोलते हुए मनन ने लीला को हक कर लिया था और वो उसके कंधे पर सर रखकर बोला, बड़ी माँ आपको पता है अरमान मुझे बहुत डांटता है और मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी रहता है, आप यहाँ हमेशा के लिए क्यों नहीं रह जाती? लीला ने तुरंत मनन को खुद से दूर किया। उसने कभी अरमान और मनन को अपना बच्चा नहीं समझा था। उनकी मौत के बाद भी लीला ने मनन की परवरिश करने से साफ इनकार कर दिया था। वो उसे कई बार तो पागल कहकर बुलाती थी और मौका मिलने पर उसे मारने पीटने लगती थी। लीला ने देवेश की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, मुझे लगता है कि अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है,
मैं इस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। कितना छोटा और पुराना घर है। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो हमसे उधार ले लेते, पर कम से कम एक घर तो ढंग का ले ही सकते थे। अरमान ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लीला अरमान को ताने मार रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे जैसे नव्यांशी के कानों में पड़ रही थी उसका खून खौल रहा था। जैसे वो अरमान को नहीं बल्कि उसी को सुना रही हूँ। ये औरत नहीं सुधरने वाली है, मेरा मन कर रहा है मैं जाकर इसका गला दबा दूं, नव्यांशी ने गहरी सांस लेकर कहा। रोहन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे सहलाते हुए बोला, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकती हैं, ये हमेशा से ही ऐसी हैं, डोंट वरी, ये यहाँ नहीं रुकने वाली हैं। नव्यांशी ने उसकी बात पर हामी भरी, जैसा कि रोहन ने कहा था और अरमान को पहले से ही अंदाजा था कि लीला उनके घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। कुछ ही देर बाद वो लीला और देवेश को लेकर वहां से जा चुके थे, तो वहीं उनके जाते ही नव्यांशी और रोहन बाहर आ गए थे। थैंक गॉड चली गई, मनन ने सोफे पर पसरते हुए कहा। रोहन मनन के पास आकर बैठ गया था, वहीं नव्यांशी ने अरमान के चेहरे की तरफ देखा जिस पर उसे मायूसी के भाव दिखाई दे रहे थे। लीला की बातें अभी तक अरमान के दिमाग में घूम रही थी। उसे आज तक अपने घर को लेकर दिक्कत नहीं थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज उसे लीला की बात बुरी क्यों लग रही थी। अरमान ने एक नज़र नव्यांशी की तरफ देखा और फिर अपने घर की तरफ। उसे अनजाने में चौहान पैलेस याद आ गया था, जो किसी राजमहल से कम नहीं था। अरमान ने गहरी सांस ली और नव्यांशी से कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? नव्यांशी ने हाँ में सिर हिलाया और अरमान के पीछे उसके वर्कस्पेस में आ गई थी।
वहीं दूसरी तरफ शाम के वक्त वंश और आराध्या घर आ चुके थे और जब उन्हें ये पता चला कि वेद की कल रात से तबीयत खराब है तो वो उसके लिए बहुत परेशान हो गए थे। इस वक्त वंश और आराध्या वेद और शिवांशा के कमरे में थे। भाई, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप काम का प्रेशर मत लिया करें, बस कुछ घंटे के लिए ऑफिस आ जाया करें। अजीब बात है, आपकी कल रात से तबीयत खराब है और मुझे प्रतीक से अब पता चल रहा है, वंश वेद की तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में बोला। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम चिल्लाकर जरूर अपनी तबीयत खराब कर लोगे, वेद ने सिर हिलाकर कहा। वंश कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रहा था। हमेशा वंश की गलती पर आराध्या उसे डांटती थी, लेकिन इस बार वो भी उसका साथ देते हुए गंभीर आवाज में बोली, वंश कुछ गलत नहीं कह रहा है भाई, डॉक्टर से पता चला कि आप पिछले कुछ दिन से दवाइयां भी ठीक से नहीं ले रहे थे और आज तो आपका फीवर भी बढ़ गया था। आप तो हमेशा अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपके लिए रिकवर करना आसान नहीं होता, फिर आप केयरलेस कैसे हो सकते हो। ये तो अच्छा हुआ नव्यांशी यहाँ नहीं है, वरना वो तो हंगामा मचा देती। वैसे तुम दोनों उसकी कमी को बखूबी पूरा कर रहे हो, वेद ने तंज भरे लहजे में कहा। मैं कुछ नहीं सुनने वाला और ना ही इस बार आपके डांटने पर चुप रहने वाला हूँ, वंश ने सख्त आवाज में कहा। आप अगले 3 दिनों तक घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे जब तक आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ जाती, बोलते हुए फिर उसने शिवांशा की तरफ देखा जो वहां उनके पास चुपचाप खड़ी हुई थी। इस बार वंश ने अपने गुस्से को काबू किया और शिवांशा से नरम लहजे में कहा, आप इनका अकेले अच्छे से ख्याल रख लेंगी ना? वंश को वेद की पिछली बार की डांट अच्छे से याद थी, जब उसने शिवांशा को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। इस बार वो अपने हर एक शब्द को सावधानी से बोल रहा था। शिवांशा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया, फिर भी वंश कन्विंस नहीं हो रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए एक नर्स। वंश के इरादे वेद को अच्छे से समझ आ रहे थे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वेद ने उसे बीच में काटते हुए कहा, किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, शिवांशा मेरा ध्यान अच्छे से रख सकती है और आज पूरे दिन से वही मेरी केयर कर रही थी। प्रतीक के आने तक मेरा फीवर काफ़ी कम हो गया था और ये सब शिवांशा की वजह से ही हुआ था। वेद भी इस बात का खास ध्यान रख रहा था कि किसी की भी बात शिवांशा को जाने अनजाने में हर्ट न कर दे। उसने वंश को सीधे सीधे नर्स रखने से मना कर दिया था और साथ ही उसने ये भी जता दिया था कि उसे शिवांशा पर पूरा यकीन है। ठीक है, अगर भाभी कर लेंगी तो, आराध्या बोली। फिर उसने शिवांशा की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, फिर भी आप अकेली नहीं हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत महसूस हो या आपको ज़रा सा भी ये लगे कि भाई की कंडीशन खराब हो रही है तो आप हमें कॉल कीजिएगा और साथ ही हमारे फैमिली डॉक्टर को। शिवांशा को वो लोग अपनी अपनी तरफ से हिदायत दे रहे थे और उन सबका इरादा एक ही था कि वेद किसी तरह का स्ट्रेस ना ले और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शिवांशा बिना बुरा माने उनकी हर बात पर हाँ में हाँ मिला रही थी। वेद को उसकी तबीयत को लेकर ढेर सारी समझाइश देने के बाद वंश और आराध्या नीचे चले गए थे। कमरे में बस अब वेद और शिवांशा ही बचे थे। उनके जाते ही वेद ने शिवांशा की तरफ देखा, बस इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था, वेद ने कहा। लेकिन वो गलत नहीं है, सच कहूँ तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी जब मैंने आपको छुआ और आपको इतनी तेज़ फीवर थी। प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाइए और मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस, मैं किसी को शिकायत करने का मौका नहीं दूंगी, शिवांशा ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर नर्वसनेस और घबराहट साफ नज़र आ रही थी और उसका कारण भी वेद अच्छे से समझता था। वंश ने इस बार भले ही कड़क लहजे में बात ना की हो या उसके इरादे अच्छे ही क्यों न रहे हों, लेकिन शिवांशा के मन में यही डर बैठ गया कि कहीं उसकी वजह से वेद की तबीयत ना खराब हो जाए। शिवांशा की आंखों में बेचैनी और घबराहट देखकर वेद ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने सामने बिठा लिया था। वेद ने अपने हाथों से उसके माथे पर उभरी पसीने की बूंदों को साफ किया और कहा,
इतना नर्वस तो कोई आईपीएस का इंटरव्यू देते वक्त भी नहीं होता। किस बात का डर है तुम्हें? अगर मेरी तबीयत और बिगड़ भी गई तो उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने आपका ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली है, वेद ने वेद की आंखों में देखकर कहा। अगर तुम इस तरह परेशान रहने वाली हो तो मैं सच में नर्स हायर कर लूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से तुम इतना बोझ क्यों महसूस कर रही हो। रिलैक्स हो जाओ, बीमार मैं हूँ और शक्ल तुम्हारी बीमारों वाली हो रही है, वेद ने शिवांशा को समझाते हुए कहा। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा पीला पड़ गया था और कंधे झुक गए थे। शिवांशा ने अपनी नजरें नीचे की ओर की और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, आप नहीं समझेंगे, जब कोई आप पर शक करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना कितना मुश्किल होता है। हर पल ये डर लगता रहता है कि कोई गलती ना हो जाए। वेद की बात सुनकर वेद के चेहरे के भाव गहरे होने लगे थे। आज उसने कुछ अलग ही महसूस किया था और ये सब उसे अंदर ही अंदर गिल्ट फील करवा रहा था। एक वेद जैसा पति तो हर लड़की डिजर्व करती है, जो बिना कुछ कहे अपनी पत्नी की बात समझ जाए। लेकिन देखा जाए तो ऐसे इंसान ज्यादातर कहानियों में ही एग्जिस्ट करते हैं। खैर, कोई आइडिया है कि अचानक वेद क्यों परेशान हो गया? चलिए समीक्षा में बता दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं। वैसे सच में ये मुश्किल होता है ना कि लोगों की आपके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और आप परफॉर्मेंस प्रेशर के चक्कर में खुद कितना दबाव महसूस करते हो।